तो ये भगवद गीता का कार्यक्रम है और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप सब लोग रेगुलरली ये भगवद गीता का कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं और आज 7वें अध्याय का 18वां श्लोक का नंबर है। सही कह रहा हूं मैं? किसी को पता है? वी डू वन श्लोक एवरी टाइम। कितने लोग पिछली क्लास में थे और कितने लोग रेगुलरली ऑन एंड ऑफ आ रहे हैं? इज दिस क्लास सपोज टू बी इन हिंदी और इन इंग्लिश? हिंदी। कितने लोग रेगुलरली आ रहे हैं और बाकी फर्स्ट टाइमर्स? सम पीपल हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। आप और कुछ? ओके, सम न्यू पीपल ऑल्सो। भगवद गीता के बारे में किसी का कोई प्रश्न है? एनीथिंग यू ऑलवेज वॉन्टेड टू नो अबाउट द भगवद गीता और आउट ऑफ द भगवद गीता? श्रीमद भागवतम में से चैतन्य चरितामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत के बारे में कोई प्रश्न? श्रील प्रभुपाद के द्वारा बताई गई फिलॉसफी के बारे में कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं है? तो इसका मतलब सबको सब कुछ पता है। तो भगवद गीता के बेसिक से प्रश्न हम पूछने शुरुआत कर देते हैं। इट शुड बी इजी। पहला प्रश्न है कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार, हिंदी में कहते हैं गीता का सार, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, उसमें भगवान अर्जुन का विषाद सुनने के बाद अर्जुन को तीन प्रकार के योग के बारे में बताते हैं। दो मिनट को बाहर ले जा बच्चे को। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान तीन प्रकार के योग के बारे में अर्जुन को जानकारी देते हैं। कौन से तीन प्रकार के योग हैं? सबसे पहले ज्ञान योग, जिसको बताना है पहले हाथ ऊपर करें। आप माता जी सब एक साथ में नहीं बोले हैं, माता जी बताएंगे। ज्ञान योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ठीक है। दूसरा कोई और बताएगा? कर्म योग। और तीसरा भक्ति योग या बुद्धि योग। तो पहला जो बताया वो ज्ञान योग। ज्ञान योग में विशेष तौर से दो तीन बातें हैं। एक है शरीर के बारे में, शरीर को भगवान किस तरह से समझाते हैं अर्जुन को, क्या बताया भगवान ने शरीर के बारे में भगवद गीता में? देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति गृहस्थत्र न मोहयति। ये जो शरीर है ये तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था, ऐसे ही जाता है और वृद्धावस्था के बाद वापस बाल्यकाल। तो जो धैर्यवान व्यक्ति है वो जिस प्रकार से किसी का शरीर बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है तो उसका कोई शोक प्रकट करने नहीं आता, कोई शोक करता है उसका, और किशोरावस्था से वो युवावस्था में जाता है उसका भी कोई शोक नहीं। तो भगवान कह रहे जो वृद्धावस्था से वापस बाल्यावस्था में जा रहे फिर उसका शोक क्यों? वास्तव में वृद्ध शरीर छोड़ के उसको एक बाल शरीर की प्राप्ति हो रही है। इसमें शोक क्या है? व्हाट इज द मैटर टू लमेंट? ये तो खुशी की बात है। आगे ज्ञान योग में भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा के गुण क्या है। क्या आत्मा के गुण बताए हैं? सब लोग एक साथ में हाथ ऊपर मत कर लेना, कहीं मुझे बताने में कठिनाई होगी कि कौन बताएगा। हाँ जी, नयनन छिंदंति शास्त्राणी नयनन दहति कावक। हाँ, तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इंडेस्ट्रक्टिबल। जो शरीर है उसका नाश होना अवश्यंभावी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जो आत्मा है उसका कोई नाश कर नहीं सकता। तो फिर शोक किस बात का, निषाद किस बात का? उसके आगे भगवान बताते हैं सुख दुख की बात, कि सुख होता है दुख होता है। वो कौन से शोक से बताया? मत्र स्पर्श सुख कौन थे या शीतोष्ण सुख दुख का। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, वो तो आता ही है। उसके आगे भगवान कर्मयोग के बारे में बताते हैं। कर्मयोग क्या है? कौन बता सकता है कर्मयोग क्या है? कर्मयोग या कर्मकांड, फल की इच्छा से कर्म करना, जो कुछ भी किया उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। आज मैं आपके द्वार पे ये नारियल तोड़ने आया हूं भगवान, मुझे फर्स्ट डिविजन चाहिए, तो आके 100 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाऊंगा। और अगर जो नहीं आई तो सोच लेना, नुकसान आपका ही है। और हम बाद में कहते हैं, क्या कहते हैं? ओम जय चित्ते नोट हरे, स्वामी जय चित्ते नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे। ओम जय चित्ते नोट हरे। भगवान से केवल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ऐसा समझता है, इंसान ऐसा समझता है कि जितना ज्यादा उसको भौतिक धन संपत्ति संपदा प्राप्त होगी, उसको उतना ज्यादा अधिक सुख मिलेगा। क्या वास्तव में ऐसा है? कितने लोग समझते ऐसा नहीं है? और बाकी समझते जितना ज्यादा धन मिले उतना ज्यादा सुख मिलेगा। क्या खरीद सकते हैं हम धन से? सुख, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी का प्रेम। सबसे बड़ी चीज क्या है इस संसार में? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस संसार में? भगवान का प्यार। किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान का प्यार? आपके लिए? एक आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस संसार में? एक आम आदमी के लिए, भक्त की बात नहीं हो रही, सुख शांति, हाथ ऊपर करके पीस ऑफ माइंड कौन बोला? और धन, ज्ञान और अपने हाथ ऊपर किया, इच्छाओं की पूर्ति और मन की शांति, हेल्थ और रोटी, और रोटी में रोटी कपड़ा और मकान इंक्लूडेड है, बेसिक नेसेसिटी। रोटी से मतलब है बेसिक नेसेसिटी। और ज्ञान, आत्मा को शांति, बहुत अच्छे उत्तर दिए गए, सभी लगभग ठीक है। लेकिन इन सब में एक प्रमुख है, ये सब उत्तर ठीक है, लेकिन एक प्रमुख चीज है जिसके बेसिस पे हमारा जीवन आधारित होता है। आपको पता है बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं। अमेरिका में आत्महत्या का रेट सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 50 out of every 1,000 डेथ्स सुसाइड। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मन की शांति नहीं है, क्योंकि उनके पास धन नहीं है, क्योंकि उनके पास रोटी नहीं है। क्यों करते हैं लोग? मानसिक शांति नहीं है उनके पास। थैंक यू। आत्मसंतुष्टि नहीं भी हो तो भी जब तक किसी इंसान को ये मालूम है कि मुझे कोई प्रेम करता है, somebody cares for me and I care for somebody, मैं किसी से प्रेम करता हूं, वो चाहे मेरी बहन है, चाहे पत्नी है, चाहे प्रेमिका है, चाहे माँ है, चाहे पड़ोसन है, चाहे भाई है, चाहे कोई भी है, कोई मित्र है, प्रेम तो प्रेम ही होता है। जब इंसान को ये दिखने लगता है या दिख जाता है या उसको पूरी तरह से यह आभास हो जाता है, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, nobody cares for me, nobody loves me, nobody needs me, I am useless, वो सुसाइड कर लेता है। देखो, ये जीवन को जीना इतना आसान नहीं है। क्या चीज आसान है इस जीवन में? अभी आप सब लोग मंदिर आए हो, आसान था? ट्रैफिक में इधर उधर पौ पौ, या बस में, किसी भी चीज में, किसी भी तरीके से कोई भी कार्य तो इस संसार में आसान नहीं है जो चुटकी बजाने से हो जाए, कुछ भी आसान नहीं। लेकिन फिर भी हम सब कुछ करते हैं, सारा दिन करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, उसके बाद यहां पे भगवद गीता की क्लास भी अटेंड करने के लिए आए हैं, अभी उसके बाद घर भी जाना है, सब कुछ हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जीना चाहते हैं, जीने की चाह है। क्यों है? बिकॉज वी हैव समबडी, कोई है जो हमारी केयर करता है, कोई है जिसकी केयर हम करते हैं। तो ये एक प्रेम है वास्तव में जिसके ऊपर ये सारा संसार टिका हुआ है। हम लोग समझते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसका जो बेयर बोन बेसिक फाउंडेशन है वो प्रेम और केवल प्रेम है। उसके बाद और सब चीजें भी अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। मेंटल पीस भी सबको चाहिए, वर्ल्ड पीस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन बेसिक बुनियाद जो है वो व्यक्तिगत प्रेम पे रखी हुई है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं श्री प्रभुपाद कि हम समझते हैं कि हमें किस चीज से कहां से सुख की प्राप्ति होगी। तो अगर जैसे ये गृहस्थों की सभा है, सब लोग काम करते हैं, जॉब पे जाते हैं और अपनी दिनचर्या सब कुछ चल रहा है, तो सबके लिए एक बहुत अच्छी चीज ऐसी है कि दो हफ्ते की छुट्टी मिल जाए और हम कहीं हिल स्टेशन या कोई बीच जैसे हवाई या कहीं चले जाएं एक दो हफ्ते रिलैक्स करने के लिए। होती है किसी की इच्छा? ज्यादातर सभी सिर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। तो आपको कहा जाए कि दो वीक का पेड वेकेशन आपको मिलेगा, हवाई आप आपको ले जाएंगे और होटल रहना खाना सब फ्री, केवल एक शर्त है, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। नो फोन, नो ईमेल, नो एसएमएस, नो फेसबुक, नो एनएमएस, नथिंग, नो इंटरनेट पीरियड एंड नो सेलुलर। कितने लोग जाना चाहते हैं? अगर ऐसे जाना है तो जेल क्या बुरी है? इसलिए कुछ लोग जेल से आके भी ऐसा कह देते हैं, हम यहां ग्रेटर क्लास में ही रहते थे तो एक थोड़ा सा दूर के पड़ोसी, उनका लड़का 5-6 साल में वापस आया, हम लोग तो नए थे, उन्होंने कहे अमेरिका से वापस आया है। 1983 की बात है, अमेरिका से होके वापस आया है। हमने ठीक है, अमेरिका से होके वापस आया होगा। तो जाकर सब पहुंच, किसी को कुछ पता नहीं था। एक बुढ़िया माता जी पुरानी रहती थी वहां, उनको पता था ये कोई अमेरिका से नहीं आया, इसको 5 साल पहले 10 साल की सजा हुई थी। वो उसके 10 साल जो है 5 साल में निपट गए और ये आ गया है वापस। तो कहने का आशय ये है कि जो प्रेम है वो हमारे जीवन की बुनियाद है। तो कर्मकांड देश है कि क्या करने से क्या मिल सकता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देख, कर्मकांड के अनुसार अगर ये युद्ध करते हुए तू जीत गया तो क्या मिलेगा? सारी पृथ्वी का राज्य भोगेगा। और अगर तू मारा गया तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, जो मर्जी खा ले। इफ यू फाइट देन यू विन बोथ वेज, चाहे मरेगा तो भी जीतेगा और अगर जीतेगा तो जीतेगा ही, और कायर की तरह भागेगा तो लड्डू है कोई लड्डू नहीं। एक तरीका है युद्ध कर ले तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे जीते चाहे हारे। और दूसरा तरीका है भाग जा, सारे जीवन के लिए अपने माथे पे कलंक लगवा ले, क्या लेगा? वेरी सिंपल, ठीक है मुझे युद्ध करना है, लेकिन अर्जुन को अभी भी युद्ध नहीं करना। तो भगवान तीसरे तरीके से बताते हैं, वो क्या बताया पीछे प्रभु जी ने, बुद्धि योग या भक्ति योग या निष्काम कर्म। ये युद्ध कर लेकिन मेरे लिए, अपने लिए नहीं। अपने ये युद्ध किया तो वो कर्म बंधन है। जिस तरह से जब युद्ध स्टार्ट हो गया था तो ऐसा बताया जाता है कि जितने बाण अर्जुन एक तरफ से चला रहा था वो अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो रहा था एक एक बाण से, और उधर से दुर्योधन जितने बाण चला रहा था हर बाण के साथ वो अपने आप को कर्म बंधन में बांध रहा था। क्यों? एक्टिविटी तो सेम ही है, एक तरह से दोनों अपने धर्म का पालन ही कर रहे हैं, दोनों ही क्षत्रिय हैं। अर्जुन अकेला तो क्षत्रिय नहीं है ना, उसका धर्म अगर युद्ध करना है तो दुर्योधन का भी तो धर्म युद्ध करना है, वो भी तो अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो ऐसा क्यों है, कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करके पीछे वाले प्रभु जी, हाँ वेरी गुड। अर्जुन धर्म के पक्ष में खड़ा है और दुर्योधन अधर्म के पक्ष में खड़ा है। तो एक्टिविटी सेम होते हुए, दोनों के क्षत्रिय होते हुए युद्ध करने का कारण डिफरेंट है। दुर्योधन ने अर्जुन का राज्य हत्याया हुआ है, छीना हुआ है, और वो उसको छीने हुए को रखने के लिए युद्ध कर रहा है। अर्जुन अपना राज्य जिसके ऊपर उसका अधिकार है वो वापस प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहा है। एक धर्म के लिए और एक धर्म के विरुद्ध। तो ये तीन योग बताने के बाद भगवान दूसरे चैप्टर में और एक चीज बताते हैं। किस बात के बारे में बताते हैं? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ कौन होता है, कैसे होता है, क्या होता है? फिर भी ये सब बात जब समझ में नहीं आती तो तीसरे चैप्टर में भगवान बुद्धि योग को और ज्यादा खोल के समझाते हैं। तो अभी अगला प्रश्न है कि भगवद गीता में भगवान ने मेनली पांच विषयों में जानकारी दी है, पांच विषयों के बारे में जानकारी दी है, कौन से पांच विषय हैं? यस माता जी, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक बताया, कितने लोग कहते ठीक है? कितने लोग कहते हैं ठीक नहीं है? देखो आपका ऑडियंस पोल मैंने करवा दिया, आपका आंसर राइट है। भगवद गीता में विशेष तौर पे पांच विषयों में जानकारी दी गई है। जीव क्या है, हु एम आई, भगवान क्या है, प्रकृति मटेरियल नेचर, और कर्म और काल। सारी भगवद गीता 18 अध्याय को तीन भागों में विभाजित किया गया है। कौन से तीन भाग हैं? सारी भगवद गीता पूरे 18 अध्याय तीन भागों में विभाजित किए गए हैं। वो तीन विभागों का नाम कैसे? हाँ लगभग ठीक है, वेरी गुड। भगवद गीता तीन भागों में विभाजित है, पहले अध्याय से छठे अध्याय तक और सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक और बारहवें अध्याय से अठारहवें अध्याय तक, छह छह छह। पहले छह अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बताया गया, सॉरी कर्म योग के बारे में बताया गया। बीच के छह अध्याय में भक्ति योग के बारे में और आखिरी के छह अध्याय में ज्ञान योग के बारे में मेनली बताया गया है। तो हम सातवें अध्याय पे चल रहे हैं। सातवें अध्याय से पहले भगवान के ऐश्वर्य बताए गए। भगवान हम किसको कहते हैं या कह सकते हैं? भग ऐश्वर्य होता है, जैसे पढ़े लिखे को हम विद्यावान कहते हैं, जो धनी है उसको हम धनवान कहते हैं, ऐसे जिसके पास भाग है उसको हम भगवान कहते हैं। ये भग कौन है, क्या होते हैं भग? ये भग होते हैं ऐश्वर्य। कौन कौन से ऐश्वर्य हैं जो भगवान के पास पूर्ण रूप से है? और कोई? यस, वो वाली माता जी ने अभी कोई आंसर नहीं दिया था। धन बल ऐश्वर्य तो है ही ये सारे, ज्ञान वैराग्य और यश और रूप। ज्ञान बल रूप और त्याग, ये सब मिला के छह ऐश्वर्य हैं जो भगवान में पूरी तरह से पा जाते हैं। अधिक नहीं, पूर्ण। उसके बाद सातवें अध्याय में पांच पंच महाभूत जिनका जिनसे ये शरीर बना है उसके बारे में बताया गया। वो क्या है? ये तो बहुत आसान है, लेकिन उसके अलावा तीन और सटल तत्व बताए गए हैं जिनको मिला के आठ। गुड, वेरी गुड। मन बुद्धि और अहंकार, और जो माला है इसमें मोती या धागा क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? धागा। भगवान अपने आप को एक धागे से तुलना करते हैं जो सारे मोतियों को साथ में जोड़े हुए है। तो सातवें अध्याय में भगवान ऐसा बता रहे हैं कि इस संसार के पीछे इसको चलाने वाला मैं स्वयं ही हूं। प्रकृति के तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण हाथ ऊपर करके बताए, और इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जा सकता है? मेन क्वेश्चन तो ये है, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर एक देहधारी आत्मा कैसे उठ सकती है तीनों गुणों से ऊपर? आगे वाले प्रभु जी, भक्ति से, भगवान कृष्ण की शरण में जाने से। वेरी गुड, ये माला आपके लिए है, थैंक यू। भगवान कहते हैं कि चार तरीके के लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते, और चार तरीके के लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। जो भगवान की शरण में नहीं आते वो चार कौन से हैं? बहुत ज्यादा ज्ञान हो जिसको, और शंकालु, स्केप्टिक हाथ ऊपर करके, जो निपट मूर्ख हैं, लंपट, एक मूर्ख है जो भगवान की शरण में नहीं आते। दूसरे बताया जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है। तीसरे, यस, जिसकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, वो कौन है? नराधम। और चौथा जो कि पहला है, मूढ़, गधे की प्रवृत्ति। उसे केवल काम करना आता है और कुछ नहीं आता, रोटी कैसे मिलेगी बस, इससे आगे की बात समझ में नहीं आती, इससे आगे की बात पे ध्यान नहीं देना चाहता है। वो उसका दायरा है अपने मूढ़ का, वो उसमें रोटी के लिए सब कुछ करेगा लेकिन उसके आगे उसको कुछ नहीं पता। उसके अलावा चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं, हाथ ऊपर करके कौन बताएगा? जिसने अभी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपने नहीं दिया प्रभु जी, प्लीज, पहले दिया है आपने, अभी और किसने नहीं दिया? आपने नहीं दिया माता जी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी और आरती मतलब दुखी, डिस्ट्रेस। चार प्रकार के लोग भगवान ने बताया जो उनके शरण में आते हैं। दुखी या डिस्ट्रेस उसको कहते हैं, आरती या जिज्ञासु या अर्थार्थी या ज्ञानी। इन चारों में से भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? क्यों? जिज्ञासु, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा आंसर क्या है, ज्ञानी के जिज्ञासु? ऑडियंस पोल लगता है ज्ञानी। अभी किसी को एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो पीछे बैठे सहस्त्रनेत्र प्रभु, हमारे एक्सपर्ट। और तो ज्ञानी, लेकिन क्यों? क्योंकि ज्ञानी परमात्मा का स्वरूप है और हम अज्ञानी, हम परमात्मा का स्वरूप नहीं है। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से कोई भी ज्ञानी भगवान का स्वरूप या भगवान का अंश है, उस तरह से हर अज्ञानी भी भगवान का ही अंश है। उस स्वरूप तो हमारा एक ही है ना, हम सब भगवान के ही पुत्र हैं। ज्ञान से गुड ट्राई। और वो भगवान के पास प्रेम के लिए आया है, क्योंकि जब कोई प्रेम के लिए आता है तो उसको ये नहीं कह सकते कि ये कुछ मांगने आया है, क्योंकि प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है एक शब्द की डेफिनेशन, प्रेम की एक शब्द की डेफिनेशन प्रेम की है सेवा। जिसको हम प्रेम करते हैं हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं या करने की हमेशा मन में इच्छा रहती है, उसको हम प्रेम करते हैं। ये दोनों साथ साथ में है। ऐसा नहीं होता कि मैं कहूं आई लव यू बट प्लीज डोंट एवर आस्क मी टू डू एनीथिंग फॉर यू। मैं आपसे प्रेम करता हूं लेकिन कभी कुछ मत मांगना मुझसे। उदार प्रेम की कैसी हो जाएगी? तो इफ यू लव समवन यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर। हम अपने पति या अपने पत्नी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, अपने मित्रों के लिए भी हम कुछ करते हैं, तभी हम उसको कह सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। जिसके लिए हम कभी कुछ नहीं करते, जो हमारे लिए कभी कोई कुछ नहीं करता, उससे हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो हम उससे प्रेम करते हैं। वो भी आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो सकता है, लेकिन वो लविंग रिलेशनशिप, लविंग एक्सचेंज, प्रेममयी संबंध नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर ईच अदर। तो प्रेम का मतलब है सेवा, और सेवा का मतलब है प्रेम। तो वी आर चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, जीवन स्वरूप होए नित्यैर कृष्णदास। तो जो ज्ञानी है वो ज्ञानी भगवान को अति प्रिय है, जो भगवान से प्रेम की वजह से, भगवान को सब कारणों का कारण समझ चुका है, उसके समझ में आ गया है कि सब कारणों के कारण स्वयं भगवान कृष्ण है, वही हमारे परम पिता परमेश्वर और सबसे बड़े वेलविशर इस दुनिया में वही है, मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए, मेरा जो उनके साथ प्रेममयी संबंध पहले था और वो टूट गया, वो मुझे दोबारा से स्थापित करना है। तो उसका मतलब क्या है कि वो भक्त भगवान के पास कुछ मांगने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेम का मतलब तो होता है सेवा, सेवा का मतलब होता है करना, देना, लेना नहीं। हम नहीं किसी को कहते यू मस्ट डू दिस फॉर मी, क्यों, बिकॉज आई लव यू, नो, बिकॉज आई लव यू आई मस्ट डू दिस फॉर यू, दैट इज द राइट वे। तो जब कोई अर्थार्थी या आरती या जिज्ञासु भगवान के पास कुछ मांगने के लिए आता है, तो वो उस ज्ञानी से निम्न कोटि का है जो केवल भगवान के प्रेम के लिए भगवान के पास आया है। लेकिन भगवान को बाकी के भी तीन नापसंद नहीं है और अस्वीकार भी नहीं है, भगवान बाकियों को भी एक्सेप्ट करते हैं और उनको भी प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रिय भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं जहां पे हम हैं कि जो ज्ञानी है वो सबसे अधिक प्रिय है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही टाइम था, हम 7:18 तक आ गए। किसी आपको प्रश्न है? आपको क्या लगता है? क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे भागवतम के अनुसार उनका गंतव्य स्थान क्या था ये नहीं बताया गया है, लेकिन जरूर कोई बहुत हाई स्थान होगा क्योंकि भगवान ने उनके घर जन्म लिया। रामायण में ऐसा दिखाया गया है कि वो स्वर्ग गए और जब भगवान ने रावण का वध कर दिया या वापस आ गए या कुछ हुआ, तो स्वर्ग से वापस आके उनको आशीर्वाद वगैरह दिया और सब कुछ। तो वो सब क्योंकि एक तरह से हिंदू फिलॉसफी पे आधारित है, वो स्वर्ग से ऊपर की बात सोचते ही नहीं है कभी, तो इसलिए हो सकता है ऐसा दिखा दिया गया हो कि स्वर्ग से आए, बिकॉज इफ समवन कैन नॉट थिंक बियॉन्ड स्वर्ग, तो उसके लिए तो वही है। जैसे छोटा 2 साल का बच्चा होता है, उसको हाईएस्ट नंबर 100 पता है, तो वो जब बहुत कुछ कहना होगा तो कहेगा 100 मुक्के मारूंगा तुझे, उसको 100 से आगे गिनती नहीं आती। तो किसी की लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन शास्त्र के अनुसार हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि उनका गंतव्य स्थान क्या था। आपका अगला प्रश्न क्या है? और भी सर्कमस्टेंस है ना। सत्यनारायण की कथा आपने सुनी है? सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी? सत्यनारायण की कथा में एक राजा का जिक्र आता है और अंत में ऐसा बताया गया है कि वो राजा को मरने के बाद दशरथ का जन्म मिला, जिससे कि उनको भगवान राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरी बात, दशरथ को ये शाप था श्रवण कुमार का कि जिस तरह से श्रवण कुमार के बाप का कि जिस तरह से हमारे पुत्र के वियोग में हम दोनों पति पत्नी तड़प तड़प के मर रहे हैं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगा। और जो आपने बात अजामिल की कही, अजामिल की कथा में आपको ये मालूम है कि उसने अंत समय में अपने पुत्र नारायण को पुकारा और अपने पुत्र नारायण को पुकारने से भी, गलती से भी नारायण का नाम लेने से विष्णु दूत आ गए और उन्होंने यमदूतों को भगा दिया। फिर क्या हुआ? हाथ ऊपर करके वो भगवान के धाम चले गए? नहीं, वो भगवान के धाम चले गए। कितने लोग कहते हैं कि विष्णु दूत उनको तभी भगवान के धाम ले गए? कितने लोग कहते हैं कि उनको बाद में भगवान के धाम जाने को मिला? और बाकी जो ना इधर हाथ ऊपर कर रहे हैं ना उधर हाथ ऊपर कर रहे हैं, उनका क्या ख्याल है? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, व्हाई बॉदर अबाउट एनीथिंग? ऑडियंस पोल राइट है, अजामिल को दूसरा चांस मिला। ही गॉट अ चांस टू करेक्ट हिमसेल्फ। और उससे पहले भी अजामिल वॉज अ वेरी वेरी हाईली प्लेस्ड डेडिकेटेड भक्त। जिससे पहले कि वो उस वैश्य के चक्कर में फॉल हुए, उससे पहले भी वो बहुत लर्नेड डिवोटी थे। देन ही हैड अ बैड टाइम। उसके बाद उनको, जैसा किसी माता जी ने बताया, उनको फिर से एक्सटेंशन मिली और उसके बाद उनके कर्मों को शुद्ध करके, या जैसे भी, वट एवर वे यू वॉन्ट टू वर्ड इट, ही गॉट परफेक्टेड आफ्टर, तब वो भगवान के धाम गए। ऐसे ही नहीं कि केवल अपने पुत्र नारायण को बुलाने के कारण नारायण का नाम उनके मुंह से निकला और एकदम से विष्णु दूत आ गए और उनको वैकुंठ धाम ले गए, ऐसा नहीं है। वेरी गुड, सही बता रहे प्रभु जी, नाम की भी महिमा है। लेकिन केवल एक बार नाम लेने से अजामिल को वैकुंठ धाम प्राप्त नहीं हो गया, उसको एक्सटेंशन मिल गई। ही गॉट अनदर चांस, सेकंड चांस। और वास्तव में जो उसका बैड पीरियड बीच का था वो भी उसका श्राप की वजह से था, तो उस श्राप से वो मुक्त हो गए और वापस अपने भक्ति के मार्ग पे जा पाए। ठीक है, और कोई प्रश्न? एक मिनट, ये पीछे वाले प्रभु जी, फिर आपको क्या लगता है, विष्णु के अवतार कृष्ण, आम जानकारी यही है, लेकिन ये जानकारी शास्त्रोक्त नहीं है। किसी भी शास्त्र में इस बात की पुष्टि नहीं है कि विष्णु के अवतार कृष्ण है, लेकिन विष्णु पुराण में इस बात की पुष्टि है कि विष्णु जी के उद्गम भगवान कृष्ण है। बात एक ही है, विष्णु जी और कृष्ण जी में कोई ऐसा अंतर नहीं है। जैसे कि कई सारी मोमबत्ती जल रही है, एक मोमबत्ती से हमने बाकी सबको लाइट किया, वो सब एक जैसी है लेकिन उसमें से एक ओरिजिनल है जिसने उन सबको जलाया है। और विष्णु जी के सब रूप भगवान के एक्सपेंशन संकर्षण से ही होते हैं। फिर भी जो भगवान का कृष्ण स्वरूप है वो सबका उद्गम, ये शास्त्रोक्त है। तो एक बार, एक मिनट के लिए सोचो कि कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन, ये प्रभु जी यहां बैठे समझ लो, आपको कुछ सेवा कुछ समर्पण करना है, आप इनको करो या भगवान को करो? आप कह रहे हो कि निष्काम दृष्टि से मैं भगवान को करूं या उनको करूं, एक ही बात लगती है, उसमें अंतर समझ में नहीं आता। लेकिन इसमें अंतर ना समझ में आने वाली क्या बात है? जो व्यक्ति है, जैसे कि हमने वो प्रभु जी की बात करी जस्ट एज एन एग्जाम्पल, उनसे हमारा क्या रिश्ता है? वो भी भगवान के पुत्र हैं और हम भी भगवान के पुत्र हैं, तो क्या रिश्ता हुआ? भाई भाई का रिश्ता होगा। वही रिश्ता हमारा ये सारे हॉल में बैठे हुए सब लोगों के साथ है, जो हमारा उनके साथ है वही सबके साथ है, जो परमात्मा उनके हृदय में निवास कर रहे हैं वही।